अब वो बताकर आप मूसा अलैहि सलाम की विलादत है। फरमाया, वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की माँ को इशारा किया, मुराद किया कि दिल में डाल दिया, कि इसको दूध पिलाओ। क्या ये इशारा सिर्फ मूसा की माँ को किया हुआ? नहीं, अल्लाह ताला तो दूसरे पारे में हमें कह चुके हैं कि वल वालिदात युर्देन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। आज की माँ ने जब बच्चे को दूध पिलाना छोड़ा तो क्या हुआ कि माँ से बच्चे की उनसीयत ही ख़त्म हो गई। और दूध छुड़वाने में एक बहुत बड़ी वजह माओं की जॉब्स होती है, माओं की एक्टिविटीज़ होती हैं। कहती हैं फिर हम बाउंड हो जाएंगे, फिर हर जगह बच्चों को ले लेके फिरना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ कि जब इधर दूध छूटा, आज हमने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उधर बच्चों ने बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में डाल दिया कि इनको दूध छोड़ो, इनको मिल्क शेक पिलाओ, लेकिन हम इनको वक्त नहीं दे सकते। लेकिन याद रखिए कि बच्चे को दूध पिलाना असल में माँ का तकवा और माँ की अल्लाह से मोहब्बत बच्चे में जाती है। वैसे आज की माँ ना ही पिलाए तो बेहतर है, जो उसमें फिल्मों और गानों और फैशन की मोहब्बत है वही जाएगी ना। अल्लाह ताला माफ़ करे, सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन अक्सरियत पे गालिब यही होता है। खैर, मूसा की माँ को कहा गया दूध पिलाओ, फिर जब तुझे इसकी जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और देख कुछ खौफ और गम न कर, हम इसे तेरे ही पास लेके आएंगे और इसको पैगम्बरों में शामिल करेंगे। ये है वो एक इमोशनल सीन जो हम सब अक्सर सुनते और सुनाते रहते हैं। अल्लाह ने बहुत लोगों को आजमाया, आपने पीछे पड़ा हजरत यूसुफ को कुएं में फिकवा दिया गया, बीवी मरियम कवारी थी बच्चा पैदा करवा दिया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाला। लेकिन ये आजमाइश कैसी है कि माँ मूसा अलैहिस्सलाम कैसे हालात थे, फिरौन ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी उसके तहत उसने वैसे ही बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था, पीसा हुआ था, उनके मर्दों से काम कराता, उनकी औरतों को बांदियाँ बना के घरों में रखता। ख्वाब या किसी भी तरीके से पता चल गया उसको, या उसको दिल में ख्याल आ गया कि बनी इसराइल का एक बच्चा मेरी सल्तनत को तोड़ेगा, अब क्या करें? कहा कोई बात नहीं, हम इनके बच्चे मरवा देंगे। जब बेटे सारे मरवाने लगे कुछ दिनों में देखा तो नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। कहा अच्छा, ऐसा करते हैं कि 1 साल के बच्चों को मरवाएंगे, एक को नहीं करेंगे। ये है फैमिली प्लानिंग जो फिरौन ने करवाई मुस्लिम नस्लों की। आज भी देख लीजिए यही हकीकत है। वेस्ट क्या चाहता है कि जैसे मुसलमान दूसरी चीज़ों में पीछे हैं ना, तो कसरत में भी पीछे ही रहे। वो दवाइयाँ, वो तरीके जो अपने मुल्कों में बैन है, वो हमारे मुल्कों में 2 बच्चे खुशहाल घराने के नाम पे पेश करते हैं। आपको हैरत होगी कि ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि बच्चे के पैदा होने पे जितने वो अलाउंस देते हैं, वल्लाही उतने अलाउंस अगर मेरा हल के हमारे मुल्कों में आ जाएं तो पता नहीं क्या हालात बन जाएं। एक बच्चा पैदा और आपको पूरा 1 साल छुट्टी, बाप को भी दे देते हैं, माँ को भी दे देते हैं उस बच्चे का खर्चा। इसके बावजूद उनके लोग अब बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। आप देख लीजिए नॉर्वे की कहानी, आप चाइना में जाके देखिए, वो माओं को अब लालच दे रहे हैं कि खुदा के लिए बच्चे पैदा करो, हम तुम्हें ये भी देंगे वो भी देंगे, लेकिन वो कहते नहीं, हमारी आज़ादी में हलल है। अपने मुल्कों में ये हालात हैं और हमारे मुल्कों में क्या नारे हैं, सड़कों के किनारे बोर्ड्स पे भी लिखवाया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे तो शायद शर्मिंदगी की बात है। फिरौन ने ये कोशिश की कि इनकी आबादी ज़रा कंट्रोल रहे। अब जिस साल में बच्चों को नहीं मरवाता था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हो गए जो मूसा से बड़े थे। अल्लाह सुबहाना ताला ने अगले साल जब के बच्चों के कत्ल का हुक्म था, मूसा को पैदा करा दिया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि मूसा हारून वाले साल में पैदा हो जाते, मसला ही ना होता? लेकिन वो अल्लाह ही कह है कि जो फिरौन से डर जाए। अल्लाह कैसे दिखा रहा है, वही बात जो ऊपर हमने देखी कि वो काम हो के रहेगा, माँ कानू या सरून, जिससे वो डरते थे। तो लिहाजा अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिरौन ने अपनी दाइयाँ यानी फीमेल जो लेडीज़ हेल्पर्स होती हैं वो पूरे शहर में छोड़ी होती थी, जहाँ कोई बनी इसराइल को ऐसे कह लें जैसे आज के मुसलमान, जहाँ कोई मुसलमान औरत प्रेग्नेंट होती ये उसकी सुनगुन रखती कि कब कहाँ बच्चा होना है, फिर देखते अगर तो बेटा है तो मरवा देते। कैसी आजमाइश थी! और बेटी है तो उसको छोड़ देते और अपनी बांदियाँ बना लेते, कि एक माँ के लिए इससे बड़ी क्या तकलीफ होगी। आप सोचिए, एक माँ पैदा करे बच्चे को और उसको यकीन हो कि पैदा होते ही ये बच्चा मेरे हाथ से लेके ज़िबा कर दिया जाएगा, इससे बड़ी क्या आजमाइश है। अल्लाह ने मूसा की माँ को पहले से दिल में डालना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारा बच्चा तो होगा, लेकिन आपने करना क्या है कि इसको दूध आपने खुद पिलाना है। अल्लाह चाहते थे कि मूसा के पेट में मुसलमान माँ का दूध जाए। अल्लाह गैर मुस्लिम औरतों का या जानवरों का दूध नहीं पिलाना चाहता मुसलमान नस्लों को। कहा इसको पिलाती रहो, और अगर खौफ आए कि फौज आएगी तो फिर तुम इस बच्चे को क्या करो, एक छोटा सा संदूक लो, उसमें रस्सी बांध के उसको दरिया के किनारे बांध दो, ताकि दरिया की तरफ तो किसी का ख्याल नहीं जाएगा। और होता है ऐसे ही था, जैसे वो रेड करते हैं ना, एकदम पुलिस आई, देखी घरों में कोई बच्चा तो नहीं, चली गई, बात खत्म। कहा इसको ऐसे ही रखा करो, जब तुम्हें फिक्र हो के कोई देख लेगा तो आके इस बच्चे को संदूक में डाल के यहाँ रस्सी बांध दो, इस तरह गम होगा, और अगर ये बच्चा चला भी गया तो हम इसको वापस ले आएंगे। बात हो गई, खत्म हो गई। कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से जब दूध पी रहे थे, इतने में माँ को फौजियों के आने के कदमों की आवाज आई होगी, तो उसने जल्दी से बच्चे को संदूक में डाला, रस्सी बांधना भूल गई, बल्कि आपके अल्लाह ने बुला दिया, और बच्चे का वो संदूक जो था वो दरिया में चलना शुरू हो गया। ये मंजर है, कहा गम ना कर, हम इसे तेरे पास लेंगे। इसको हाईलाइट करें, यकीन करें ये अल्लाह का वादा सच होता है। कैसे हुआ आगे जाके भी बात करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने इसे दरिया से निकाल लिया। अब जैसे हर जगह रिजॉर्ट्स होते हैं या बड़े एक लग्जरियस घर होते हैं ना, सी व्यू या समंदर के किनारे, फिरौन की मलका आसिया थी, उनका भी कोई महल था जो समंदर के या दरिया के दूसरे किनारे था। बच्चा दरिया की लहरों में बहता हुआ दूसरी तरफ गया, उधर कहते हैं मलका आसिया जो थी अपनी बांदियों के साथ थी, देखा ये ताबूत सा आ रहा है, संदूक खोला तो उसमें बच्चा एक प्यारा सा निकल आया। अलकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, पीछे पढ़ चुके हैं सूरह ताहा में कि अल्लाह ने मूसा के बारे में लोगों के दिल में बड़ी मोहब्बत डाली हुई थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनको देख के प्यार आता है। फिरौन की मलका ने कहा कि हम इसको लेंगे। अब क्या हुआ, दरिया से निकाला ताकि वो इनका दुश्मन और इनके लिए सबब रंज बने। हाईलाइट करें, उस वक्त वो खुशी खुशी में देख रहे हैं कि ये चीज़ एक खोई हुई चीज़ मिल गई, लेकिन ये रंज का सबब होती है। बाज़ दफ़ा आपको गिरी पड़ी चीज़ उठा लेते हैं, खुश होते हैं एक चीज़ मिल गई है, बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं। वो चोरी की हो सकती है। इससे अमल की बात क्या निकलती है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको मिले उसमें आपकी खुशी भी हो। आप हराम से कोई चीज़ ले आते हैं, बड़े खुश हैं, पता चलता है कि लेने के देने पड़ गए। वाकई फिरौन और हामान और इसके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे। यानी फिरौन जो सबके ऊपर हुकूमत कर रहा था, इतना रॉन्ग डिसीजन कर बैठा कि उसने इस बच्चे के मामले में दुरुस्त फैसला ना किया। फिरौन की बीवी ने इससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। ये किसका जुमला है, मलका सासिया का, उस वक्त तक अभी कुफर पे थी। क्या अजब है कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, या हम इसको बेटा ही बना लें, और ये इंजाम से बेखबर थे। ये है वो जुमला जिसने रास्ते हमवार किए बीबी आसिया के इस्लाम की तरफ आने के। बस दफ़ा इंसान अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला बोल देता है जो बाद में उसके लिए खैर का सबब होता है। इसने सिफारिश कर दी कि हम इसको ले लेंगे, ठीक है, लेकिन फिरौन ने क्या कह दिया, कहने लगा तेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी तो नहीं होगी। और उसने सिर्फ अपनी बीवी की बात ना टालने के लिए उस बच्चे को रख लिया, हालांकि वो चाहता नहीं। आगे आप जाके पढ़ेंगे कि फिरौन ने कहा ये तेरी ठंडक होगी, मेरी नहीं है। पता क्या चला कि कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, कोई वक्त कबूलियत का होता है। अब आप सोचिए कि माँ का क्या होगा। बिल्कुल अल्लाह ताला कहते हैं बस बहफवाद उम्मी मूसा फारिगा। इधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। आप जरा अपने ऊपर तो लें, किसी के बच्चे हैं बेबी सिटिंग में तो उनका दिल भी अक्सर उधर ही अटका होता है, हालांकि इससे भी ज़्यादा कोई कंफर्टेबल माहौल होगा, लेकिन माओं का दिल उड़ जाता है। बच्चे बाहर काम पे जाते हैं ना तो माएँ बेचैन होती हैं, बार बार फ़ोन करती हैं अब किधर हो, अब कहाँ हो। माँ माँ होती है। माँ का दिल था कि बच्चा मेरे सामने दरिया में चला गया, पता नहीं इसका क्या होगा। वो इसका राज फाश कर बैठती अगर हम इसकी ढारस न बंधा देते, ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। यानी इतना बड़ा माँ के लिए ये सदमा था कि वो सबको बता देती, लोगों मेरे बच्चे को बचाओ वो दरिया में, तो बता नहीं सकती क्योंकि बताने से लोगों को पता चल जाएगा ये बनी इसराइली बच्चा। कितनी आजमाइश है बंदे की। लेकिन जो कर सकती थी वो क्या हुआ, वकालत ली उख्ती ही कुस्सी, इसने इस बच्चे की बहन से कहा इसके पीछे जा। चुनाचे वो अलग से इसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता ही ना चला। ये कौन है, हाईलाइट कीजिए, यहाँ दूसरी औरत आ गई मूसा की जिंदगी में। पहली औरत माँ उम्मी मूसा, दूसरी औरत क्या है, उख्ती मूसा, मूसा की बहन। क्या यहाँ ये नहीं आ सकता था कि उस औरत ने अपनी बेटी को भेजा, बेटी थी ना उनकी, ये क्यों कहा कि मूसा की बहन को भेजा। यहाँ से भाई और बहन के रिश्ते का इशारा। हकीकत यह कि जिस तरह बहनें भाइयों से प्यार करती हैं, शायद भाई वैसे नहीं सोचते इल्ला माशाल्लाह, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता खूबसूरत रिश्ता होता है। आप देखिए कि माँ अपने बच्चे को पालती है पोसती है ना, तो उसको एक ख़ास हद तक उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा और मुझे देखेगा, मैं इसके बच्चों को पालूंगी। बहनों को भाइयों से क्या लेना होता है। लेकिन आप महसूस करें, ख़ास तौर पे बहन ज़रा बड़ी हो ना अगर, और 5-6 साल के बाद एक बच्चा पैदा हो जाए तो वो एक दूसरी माँ ही बन जाती है। बहन बहुत प्यार से बच्चे को करती है। और यहाँ से आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के हिफाजत में एक बहन का भी किरदार है। وہ بھی ایک بہن ہی تھی جس نے عمر کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی طرف بلایا. یہاں میں اور آپ اپنے بہن ہونے کو سوچیں, اپنے لیے عمل کی بات لکھیں. کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے اچھی بہنیں ہیں؟ کیا ان کے رشتے کروا دیں, ان کی دعوتیں کریں؟ نہیں, دین کی دعوت. کیا میرا بھائی ابھی تک دین کی دولت سے محروم تو نہیں؟ میں سب کو قرآن سکھاؤں اور میرے بھائیوں کو قرآن نہ آئے؟ تو یہاں اپنے اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے خیر کا معاملہ کرنے والا بنا دے. میں نے دیکھا اکثر ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں, اپنوں سے نہیں کرتے, کیونکہ گھر میں بیٹھے ویسے کہنا بیٹھ جاؤ آرام سے, تم وہی ہو جس کا ناک بہتا ہوتا تھا, میں نہیں تمہاری سنتا, برداشت کر لے. ہاں بھی تھی میں وہی, اب میری بات سن لو, اب جو بات کہہ رہی ہوں وہ اچھی ہے. تو بعض دفعہ بچپن کی کچھ چیزوں کے تانے کے ڈر سے بھی ہم اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کہتے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس ماں کی کتنی, اور ماں کی عقل مندی کتنی ہے, خود جاتی تو ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جاتے, تو بہن کو بھیجا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیر کا نقطۂ آغاز بھی عورت کی قربانی اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. آج اگر اللہ عورت کو قربانیاں کرنے والا اور حکمت والا بنا دے تو یقیناً ایسے موسیٰ بہت سارے پیدا ہوں گے جو کتنے فرعونوں کو ناک کے چنے چبوا دیں گے. خیر ہوا کیا, دور سے دیکھتی رہی چلے گئے. اب آپ امیجینیشن میں لائیں کہ موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں. اب بچہ بھوکا تھا, ایک عورت دودھ پیش کر رہی ہے, دوسری کر رہی ہے, موسیٰ صاحب پی ہی نہیں رہے. بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد, یعنی اس وقت میں, موسیٰ 3 دن تک بھوکے رہے. روزہ رکھ لیا 3 دن کا کہ نہیں میں نے اپنی ماں کا ہی دودھ پینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیوں کو حرام کر رکھا تھا, یعنی موسیٰ کو کہہ دیا تم نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پلانا. اچھا فرعون کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ ڈبے کا دودھ پلا کے دیکھ لوں, کوئی الیکٹرو ملک اور کوئی ایسا پی لوں, اور اس وقت ہوتا بھی نہیں ہوگا. اس وقت بھی یہ یقین تھا کہ انسان کو انسان کا ہی دودھ پلانا ہے. اور آپ کو پتا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی تھا, اپنے دودھ کے ساتھ مائیں بچے کو دوسرے کا دودھ پلاتی تھیں. عربوں کا کلچر کیا تھا کہ شریف اور خاندانی اور نیک عورتوں کا دودھ پلاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود اولاد کی نعمت سے محروم تھی تو دوسروں کے بچوں کو لیتی اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پلواتی, اور پھر رشتے میں رضائی خالہ بن جاتی تو پھر وہ ان کے سب بھانجے کی طرح رہتے. یہ ایک بڑی ٹریڈیشن ہے, آج ہمارے کلچر میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے. لیکن ایک بچہ جب مختلف ماؤں کا دودھ پلا پیتا ہے تو اس کے اندر بہت طاقت اور انرجی ہوتی ہے. تو بہرحال سب عورتوں کا دودھ پیش کیا گیا موسیٰ صاحب, انہوں نے پیا ہی نہ. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کی ماں ہے, ماں دیکھیں بہن بھی تو عقل مند ہے, حالانکہ بچی ہوگی نا, لیکن بڑی سمجھداری سے اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک عورت ایسی ہے شاید اس کا دودھ پی لیں اور اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا, مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. کیا وعدہ تھا اللہ کا؟ اِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یاد رکھیے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والے اگر اپنے بچوں کو سمندروں کی موجوں کے بھی حوالے کر دیں گے تو اللہ بچا لے گا, اور اگر اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کے کیریئر ہم خود بنائیں گے تو بڑی بڑی یونیورسٹی سے بھی وہ باغی اور سرکش بن کے آئیں گے. آج ہم اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے, لیکن وہ فرما برداری ان کی آنکھوں میں نہیں ہمیں دکھ رہی کہ جو کہ دکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال ام موسیٰ جیسی ہے, اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور معاوضہ بھی لے. کیسے؟ اب جب عورت کا دودھ پی لیا تو پھر ان کی جان میں جان ہے. آپ خود سوچیں نا, گھر میں بچہ رو رہا ہو تو کیا بنتا ہے, اور اللہ رحم کرے اگر آپ میاں کے سپرد کر کے بچے کو ذرا دیکھیں, ذرا اس کو دیکھیے گا میں آتی ہوں, تو پتہ نہیں چلتا بعد میں دونوں میں زیادہ شور کون مچا رہا ہے, ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ ساسیں جو کبھی نہیں معاف کرتی بہوؤں کو کام سے, وہ کہتے جاؤ بیٹا تم اس کو سنبھالو میں کام کر لوں گی. روتے بچے کو کوئی نہیں سنبھال سکتا, ہنستا بچہ سب کا, روتا بچہ ماں کا. اب جب وہ محل میں کوئی حرام مچا تو پریشانی ہو گئی, تو جب موسیٰ کی ماں کا دودھ پی لیا تو فرعون کی مجبوری بن گئی, کہا بھائی تم بھی ادھر ہو, کہیں گے میں نہیں رہتی ادھر, میرے اور بھی بچے ہیں. کہا نہیں بھائی نہیں رہو, نہیں رہیں گے. کہا اچھا پھر ایسا کرو, تمہیں ضرورت ہے نا مجھے یہ بچہ دے دو, میں اس کو اپنے گھر میں رکھ کے پال لوں گی اور تمہارے لیے فرسٹ جیسے فرسٹ پیرنٹنگ کر دوں گی. اس نے کہا لے جاؤ. موسیٰ پھر واپس آ گیا اپنے گھر میں اور ان کے کھانے پینے دودھ کے ڈبے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہوں گی ان کی کینڈیز وغیرہ وہ فرعون کے محل سے آنے لگی. الوداع نہایا میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ کہانی پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ فرعون کے گھر سے اور جو شاہی بچہ بن گیا نا, اڈاپٹیڈ سن تھا, ابھی چند دن پہلے ادھر بھی تھا ایک بچہ آیا ہے نا, اتنے شوق سے تو کوئی اپنے بھائیوں کے بچے نہیں ٹی وی پہ دیکھتے جتنے شوق سے عورتیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہنے کہ میں بچے کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے کہا اس کو کوئی منہ دکھائی بھی دینی ہے آپ نے, अब सिर्फ मेरे लिए लंदन वाले और यूके वाले ये बात समझे होंगे, बाहर वालों को तो पता ही नहीं। तो बहरहाल आप देखिए, बच्चा बच्चा होता है, कोई गरीब के घर पैदा हो गया, कोई शाही। अब माँ ने ये नहीं कहा कि मूसा अलैहि सलाम चलो भाई इस महल में आगे इधर ही रहे, माँ को पता था मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा अगर इसको इतनी लग्जरियस जिंदगी में रखा। वापस एक मुस्लिम गोद में आ गया, वही कोठरी में, खाना पीना उधर से आ रहा है जिसमें बाकी भी पले, और इस तरह मूसा की पूरी तरबियत माँ के घर में हुई। सुभान अल्लाह।